ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पार्टी के हितों के खिलाफ गतिविधियां करने के आरोप में पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल को संगठित सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर कार्रवाई करने का नेकपा एमाले सचिवालय बैठक का निर्णय। सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से संविधान संशोधन का काम आगे बढ़ा है, उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह का कथन। सहकारी धोखाधड़ी संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की प्रतिबद्धता और कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 30 से अधिक लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले ने पार्टी के हित के विपरीत गतिविधियां करने के आरोप में पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल को पार्टी के संगठित सदस्य पद पर पद से हटाते हुए कार्रवाई करने का निर्णय किया है। नेकपा एमाले केंद्रीय कार्यालय च्यासल में हुई सचिवालय बैठक ने चूंकि नेता रावल की गतिविधियां पार्टी को मजबूत करने के बजाय कमजोर करती दिखी है, इसलिए उन्हें संगठित सदस्य के पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी बैठक के बाद एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने दी। बैठक में जिन नेताओं से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के निर्माण को लेकर दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, उन दो नेतागण डॉ बिंदा पांडे और उषा किरण तिमल सिन्हा को पार्टी के निर्देश में आगे चलने का निर्देश देते हुए 6 महीने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी से हटाने का भी फैसला किया गया है। इसी तरह बैठक में सीपूस 21 और 22 गते पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की केंद्रीय कमेटी बैठक बुलाने का निर्णय करते हुए केंद्रीय कमेटी बैठक की कार्यसूची भी तय की है। बैठक में अन्य विषयों पर विमर्श भी हुआ था। संखुआ सभा में 5 मेगावाट क्षमता वाली लघुआ नदी छोटे जल विद्युत परियोजना निर्माण संपन्न हुआ है। सभा पोखरी हाइड्रो पावर लिमिटेड ने परियोजना निर्माण कार्य किया है। सभा पोखरी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में निर्मित परियोजना से उत्पादित बिजली 33 केवी प्रसारण लाइन मार्फत तुमलिंग टार सब स्टेशन होते हुए राष्ट्रीय प्रसारण से जोड़ा गया है। ईसाई धर्म के संस्थापक येसु क्रिस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ईसाई समुदाय लगायत लोगों ने क्रिसमस डे धूमधाम के साथ मनाया। क्रिसमस डे विभिन्न चर्चों और मंडलियों में शुभकामनाओं का आदान प्रदान करके मनाया जाता है। आज से 2025 साल पहले 25 दिसंबर को इसराइल के बेथल हम में येसु क्रिस्ट का जन्म हुआ था। क्रिसमस डे जिसे दुनिया भर में लोग मनाते हैं, नेपाल में 2063 के बाद एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भक्तपुर में आयोजित संसद संचार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पत्रकारिता पेशे को लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक साथ लाया जाएगा। उपसभामुख इंदिरा राणा मगर ने कहा कि पत्रकारों को संसद पर रिपोर्टिंग करते समय संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में समाचार एकत्र करने में जिम्मेदार और ईमानदार होना चाहिए। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सहकार्य में संविधान संशोधन के काम को आगे बढ़ाया गया है। रूपंदेही में एक कार्यक्रम के दौरान उप प्रधानमंत्री सिंह ने यह बात कही। उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि आर्थिक मंदी के कारण प्रभावित अर्थतंत्र को ऊपर उठाने के लिए सरकार रणनीतिक रूप में काम कर रही है और सुधार के संकेत भी मिले हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सहकारी धोखाधड़ी पर संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को सरकार नहीं बख्शेगी। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि रिपोर्ट में सहकारी धोखाधड़ी के सभी आरोपियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा। मंत्री गुरुंग ने कहा कि सहकारी धोखाधड़ी की जांच प्रक्रिया में रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लामिछाने को रिहा करने का विरोध एक असंवैधानिक कार्य है। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा है कि मंत्रालय काठमांडू निवासियों को 12 महीने शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक वातावरण बनाने की पहल कर रहा है। आज मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में मंत्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि काठमांडू घाटी में मिलमची को 2400 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाना चाहिए। वन तथा वातावरण मंत्रालय ने मुगरी जिले में एक नए निकुंज या शिकार आरक्षण के निर्माण का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। सोमवार को वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ने एक मंत्री स्तरीय निर्णय लिया और मुगू के कारमरोग गांवपालिका के कुछ क्षेत्रों को कवर करते हुए एक निकुंज या शिकार रिजर्व बनाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया था। बांके के सभी स्थानीय तहों में कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। जिला स्वास्थ्य कार्यालय बांके के पोषण फोकल पर्सन अधिकृत देवनारायण उपाध्याय ने कहा, पिछले श्रावण से अब तक 2 साल से कम उम्र के 1588 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। उनके मुताबिक जानकी गांवपालिका और नरेनापुर गांवपालिका में कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि कोहलपुर नगरपालिका में कुपोषित बच्चों की संख्या कम है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अजरबैजान एयरलाइंस का एक यात्री विमान आज कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा कजाकिस्तान के एक्टू शहर के पास हुआ है। इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मृत्यु की खबर आई है। विमान में कुल 67 लोग सवार थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर थे। वहीं इस खौफनाक विमान हादसे में 28 लोग जिंदा बच गए हैं, जिनमें से 11 साल की एक लड़की और 16 वर्षीय किशोर समेत 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घने कोहरे के कारण विमान का रूट डायवर्ट करना पड़ा। इस विमान को अकताव के लिए डायवर्ट किया गया था। हालांकि जैसे ही विमान अकताव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहुंचा, विमान की ओर से आपातकालीन लैंडिंग के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन विमान इससे पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि वो घटना के हर संभव पहलू की जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हादसे के पीछे कोई तकनीकी गड़बड़ रही रहेगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पार्टी के हितों के खिलाफ गतिविधियां करने के आरोप में पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल को संगठित सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर कार्रवाई करने का नेकपा एमाले सचिवालय बैठक का निर्णय। सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से संविधान संशोधन का काम आगे बढ़ा है। उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह का कथन, सहकारी धोखाधड़ी संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई 30 से अधिक लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।